मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 15 मई 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं नेहा कुमारी, आपका गांव है मुनिचक, जिला है बेगूसराय बिहार। संजय कुमार, आपका भी गांव है मुनिचक, जिला बेगूसराय बिहार। हर्षित कुमार, आपका गांव है कजरी नूरपुर, जिला है शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश। वंशिका आचार्य, खरगोन मध्य प्रदेश से। शैलेश पटेल, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। रविंद्र सिंह तोमर, बेंगलुरु कर्नाटक से। प्रभात कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार से। और रितेश राज, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो नेहा, संजय, हर्षित, वंशिका, शैलेश, रविंद्र, प्रभात और रितेश, आप सभी 8ों साथियों का मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों खासकर जो स्टूडेंट अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मेरे पास बहुत से मेल आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन्हें क्लास में आने से पहले क्या करना चाहिए। आपकी यह जो जिज्ञासा है ये बहुत पवित्र जिज्ञासा है और आपके अंदर जो ये उतावलापन है ये भी बहुत ही अभिनंदनीय उतावलापन है कि आप अपने इस समय को भी वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। दोस्तों मैं यहां एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा कि इनफैक्ट यहां की जो 15 दिन की क्लासेस हैं ये क्लासेस आपके सिलेबस को पूरा नहीं कराएंगी, आपको केवल ये बताएंगे कि कैसे आप अपने सिलेबस को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं, राइट? इसलिए आप क्या पढ़ेंगे ये बताना मेरे लिए अभी संभव नहीं है, क्योंकि उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप उसको पढ़ेंगे कैसे। पढ़ तो आप रहे ही हैं, राइट? अभी मैं आप सबको केवल ये बताना चाहूंगा, आप सबसे केवल ये अर्ज करना चाहूंगा कि प्लीज, चूंकि आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, एकेडमी और आपके बीच में एक प्रकार का नैतिक समझौता हो चुका है, आपने प्रतिश्रुति यानी कि अपना वचन दे दिया है कि मैं एकेडमी के अक्टूबर नवंबर की क्लासेस में आ रहा हूं, आपने वचन दे दिया है, तो आप जो अपनी तैयारी के बारे में पूछ रहे हैं तो सिविल सर्विस की तैयारी के बारे की बात को छोड़ दीजिए, आप खुद की तैयारी की बात कीजिए, आप खुद को तैयार कीजिए, आप अपने को इस लायक बनाइए कि यहां की 15 दिन की क्लासेस में आप मैक्सिमम चीजें लेकर जा सके। और ये केवल सिविल सर्विस में काम नहीं आएगी बल्कि दूसरे भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में काम आएगा और साथ ही साथ आपकी ताउम्र आपके साथ ये चीज रहेंगी और आपकी मदद करती रहेंगी। तो आपके लिए जरूरी है कि आप प्लीज लाइफ मैनेजमेंट को भी सुने, इससे आपके मानस की संरचना में परिवर्तन होगा, आपकी सोच अलग तरीके की बनेगी, आप ज्यादा मर्यादित और अनुशासित अपने आप को बना पाएंगे और साथ ही साथ आप डेली ऑडियो लेक्चर भी जरूर सुने, इससे आपके अंदर एक अलग किस्म की जुताई होने लगेगी, जिसको जमीन कहते हैं ना, जमीन की जुताई होती है बुआई से पहले, वो आप नहीं समझ पाएंगे, वो क्लास में आने के बाद आपकी समझ में आएगी कि सही में जो सर उस वो जो कहा करते थे वो क्यों कहा करते थे और वो कितना महत्वपूर्ण था। हाँ, इसके साथ ही साथ यदि आपके लिए संभव है, मुझे नहीं मालूम कि आप सब किन किन परिस्थितियों में हैं और किया तो जा ही सकता है, बहाने तो देखिए बहुत से होते ही हैं, आपको चाहिए कि आप रोजाना रेडियो न्यूज सुने, कोशिश करें कि आप दूरदर्शन के भी न्यूज अगर देख सके तो, और नहीं भी देखेंगे दूरदर्शन के तो रेडियो के न्यूज तो आप डेफिनेटली सुने ही, और साथ ही साथ रोजाना एक अखबार पढ़े, अखबार स्तरीय हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, बस अभी आप सिर्फ इतना करें, बाकी समय की प्रतीक्षा कीजिए, यहां आइए, हम लोग 15 दिन साथ रहेंगे, साथ में बिताएंगे और फिर आप उसे पूछेंगे ही नहीं कि सर क्या करना चाहिए, आप खुद ही खुद करने लगेंगे और आप खुद को इस स्थिति में पाएंगे कि दूसरों को बताएंगे कि भैया ये करना चाहिए। दोस्तों जहां तक मुख्य विषय का सवाल है, आज के मुख्य विषय को मैं अभी फिलहाल जो पीछे से हम लोग चलते चले आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, हम सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी पर बातें कर रहे हैं, रिजल्ट निकला उसको लेकर के और स्कोर को लेकर के, कट ऑफ मार्क्स को लेकर के, हम वो एक सिलसिला सा बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि अभी इसी सिलसिले को थोड़ा सा मैं आगे भी जारी रखूं, क्योंकि तैयारी क्या करें कैसे करें, ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पहले हमें जमीन तो मिले, बिना हम अपनी जमीन को तलाशे कैसे कुछ फसल बो सकेंगे, कुछ पैदा कर सकेंगे, कुछ पौधे लगा सकेंगे। तो इनफैक्ट मैं इसके माध्यम से सिविल सर्विस की जमीन ही आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, या यूं कह लीजिए कि आपको उस जमीन से अवगत करा रहा हूं। तो उसी के बारे में हम लोग आज कुछ बातें करेंगे। थोड़ी सी बातें हम करते हैं न्यूज एनालिसिस के तहत कुछ खबरों के बारे में। रेडियो न्यूज में आपने एक खबर सुनी और वो थी यरूशलम को लेकर। मित्रों, जो फिलिस्तीनी है, फिलिस्तीन है, और जो आपके इसराइल है, इसके बारे में कुछ बातें मैंने विस्तार के साथ उस समय की थी जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, और आपको ध्यान होगा, और वहां के प्रधानमंत्री भारत आए थे, हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, जा चुके हैं, और उनके भी आए थे। और जब भी इसराइल और फिलिस्तीनी की बात होती है, या दोनों में से किसी एक देश की बात होती है, मैं डेफिनेटली चर्चा करता ही करता हूं, हमेशा चर्चा करता हूं। जब प्रधानमंत्री जी गए थे तब भी हम लोगों ने बात की थी, और अब जब उनके आए थे तब भी हम लोगों ने बात की थी, तो मैं उसके डिटेल पर तो नहीं जाऊंगा। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप लगातार न्यूज के संपर्क में बने रहते हैं, जो कि आपको बने ही रहना चाहिए, तो दिसंबर के आसपास अमेरिका ने एक घोषणा की थी कि वह अपना दूतावास अब यरूशलम में शिफ्ट करेगा। तो अभी तक दूतावास कहां था अमेरिका का, या कि दूसरे देशों के दूतावास कहां थे? तो जो इसराइल है उसी का एक शहर है तेल अवीव। दुनिया के सारे दूतावास तेल अवीव में है, अमेरिका का भी वही है। इनफैक्ट जो यरूशलम है, जो इसराइल की हम राजधानी के नाम से जानते हैं, अभी वो सर्वमान्य नहीं है। कुछ लोग उसे मान्यता देते हैं, कुछ लोग उसे मान्यता नहीं देते हैं, तो एक विवादास्पद है मामला। और ये जो विवाद भी है वो इसराइल और फिलिस्तीनी के बीच में है। इनफैक्ट तो अमेरिका ने जब अपना दूतावास शिफ्ट करने की घोषणा की, तो उस समय एक काफी बेचैनी दुनिया में हुई कि ये क्या हो रहा है, और लोग जानते थे कि जैसे ही यह घटना घटित होगी मामला गड़बड़ाएगा, और कहीं ऐसा न हो कि ये जो पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है इसमें अशांति फैल जाए। और कल वही हुआ है कि अमेरिका ने अपना दूतावास शिफ्ट किया, उसका फिलिस्तीनियों ने विरोध किया, और जब फिलिस्तीनियों ने विरोध किया तो बट नेचुरल है कि फिर इसराइल ने अपनी तरफ से कार्रवाई की, और उसमें इतने सारे लोग मारे गए। तो एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि एक अलाव सा जलने लगा है, भूसा घास फूस पहले से इकट्ठी थी उसमें एक छोटी सी चिंगारी लग गई है, अब देखते हैं कि वो चिंगारी क्या रूप लेती है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। मित्रों, जो दूसरी खबर है वो है नवाज शरीफ साहब की। आप लोगों ने न्यूज में दो तीन दिन पहले ये चीजें सुनी है कि किस तरह से जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, उन्होंने ये कबूला है कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, और जो भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उन्हें पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान आतंकवादियों का हाथ होता है, और ये बहुत बड़ी बात है, तो ये कंटेंट के रूप में आपके ध्यान में रहनी चाहिए। इसके बाद न्यूज में ये आपने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से मिलने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी घटना होगी, इस पर भी आप निगाह रखिएगा। इसके बाद मलेशिया के जो अभी चुने गए हैं राष्ट्रपति, वो आपको मालूम है कि एक बहुत ही जबरदस्त घटना है, और घटना इस मायने में है कि जो चुने गए हैं उनकी जो एज है वो है 92 ईयर्स। 92 ईयर्स एज आप कल्पना करके देखिए कि क्या उम्र होती है, इस उम्र 92-93 कुछ ऐसे ही होगा। मित्रों, ये बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री चुने गए हैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री ही चुने गए हैं, ध्यान आ गया, प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मित्रों, इसके बाद एक और न्यूज आपने सुनी पढ़ी होगी कि जो मानसून है इस बार केरल में 28 तारीख को आकर के अपनी दस्तक दे देगा। पहले वो 1 जून को आता था, 3-4 दिन पहले मानसून आ रहा है। तो इस मानसून के आने की वो केरल में ही क्यों आता है और किस तरह से मानसून का रास्ता बनता है, बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाकर के इसे भी पढ़ लें और देख लें। और इसके साथ ही आज मैं आपको एक न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स नेपाल को लेकर के प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी नेपाल से होकर के आ गए हैं, तो नेपाल में उन्होंने नेपाल और भारत के संबंधों का और क्या आगे बढ़ा है और किस तरह के एक्शंस इस दौरान हुए, क्या निर्णय लिए गए, उसके बारे में इस एडिटोरियल कमेंट में दिया हुआ है। आप लोग उसे थोड़ा सा देख लेंगे, चूंकि वक्त की कमी है तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। मित्रों, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं और इस मुख्य विषय का टाइटल आप रख सकते हैं गाइडेंस। देखिए, जब से सिविल सर्विस का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, आप देख रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनमें से बहुतों के आपको YouTube पर स्टेटमेंट गाइडेंस सुनने को मिल रही है। कभी अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक दो चीज देखिए, कुछ चीजें तो होती हैं वो बहुत ही कॉमन होती हैं, वो उपदेश किस्म की होती हैं। देखिए, 3 चीजें होती हैं जब भी आप किसी भी चीज के बारे में सुनते हैं तो उसमें 3 चीजें आपको मिलेंगी। एक होता है उपदेश, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, राइट? दूसरा होता है आदर्श। आदर्श का मतलब है कि मैं ये करना चाह रहा हूं और ऐसी चीजें जो नहीं की जा सकती हैं। तीसरी चीज होती है गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब होता है कि आप एक्शन बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो रियल चीज होती है। गाइडेंस जो होती है वो रियल चीज होती है। तो जहां तक उपदेश और आदर्श की बात होती है वहां सभी आपको एक जैसी बातें कहते हुए मिलेंगे, और जो सच भी है, भाई मेहनत करनी चाहिए, आपको निराश नहीं होना चाहिए, लगे रहना चाहिए, है ना, ये सारी बातें हर कोई कहेगा और वो सच बोल रहे हैं। लेकिन जो गाइडेंस की बात है, जब आप गाइडेंस वाले पॉइंट पर आएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सबके अपने अपने अनुभव रहे हैं और वो अपने अनुभव की ही चर्चा कर रहे हैं, और बेहतर है कि वो अपने ही अनुभव की चर्चा करें, ईमानदारी के साथ करें, और वो कर रहे हैं। तो जब आप उनके अनुभवों को अलग अलग नोट करते जाएंगे तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि यार किसकी बात माने, क्योंकि कोई ये कहता है कि नहीं कोचिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कोई कहता है कि नहीं कोचिंग तो मैंने ली ही नहीं लेकिन उसकी रैंक आ गई। अब आपको यहां विरोध दिखाई दे गया। कोई कहता है कि मैंने ये किताब पढ़ी और कोई कहता है कि ये किताब मैंने पढ़ी ही नहीं, कोई कहता है मैं ये अखबार पढ़ता रहा हूं, कोई कहता है मैं ये नहीं पढ़ता रहा हूं, कोई कहता है कि मैं पिछले 2-3 साल से केवल यही कर रहा हूं, कोई कहता है कि नहीं मैंने नौकरी करते हुए इसे क्वालिफाई कर लिया है, कोई गांव का है, कोई शहर का है, किसी के पिता की पृष्ठभूमि बहुत ही कमजोर है तो किसी के पिता बहुत अच्छी पोजिशन में है, कोई बहुत बड़े शहर में रह रहा है, कोई कस्बे में रह रहा है, कोई किसान की बेटी है, क्या आप देख रहे हैं इसमें वेरिएशंस देखिए। तो अब जब आप इतने वेरिएशंस देखते हैं तो आपके लिए मुश्किल ये होता है कि जब आपके सामने पगडंडियां ही पगडंडियां बिछी हुई हों तो उसमें सही पगडंडी का चुनाव करना आसान नहीं होता है। और मुश्किल बात यह है कि ये सारी की सारी पगडंडियां वो पगडंडियां हैं जो उसी मंजिल तक नहीं पहुंचाती हैं, पहुंचाती उसी मंजिल तक है, लेकिन याद रखिए कि उन पगडंडियों पर चल करके वो पहुंचे हैं। जरूरी नहीं कि उन्हीं पगडंडियों पर चलकर आप भी पहुंच जाएं, याद रखिएगा वो उनकी पगडंडी थी। देखिए, पगडंडियां तो बनती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, उन्होंने अपनी बनाई है, चल चल करके उन्होंने एक लकीर सी जमीन पर खींच दी है तो वो उनकी पगडंडी है। आपको देखना केवल यह होगा इनके माध्यम से कि मेरे लिए इन पगडंडियों को बनाने का कोई तरीका यहां से निकल सकता है, दैट्स ऑल, और वही आपकी रियल गाइडेंस होगी। तो मित्रों, चूंकि वक्त बहुत कम रह गया था तो इसीलिए मैं इस पर अब ज्यादा चर्चा नहीं कर पा रहा हूं। अगर कल कोई बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं हुआ तो फिर कल हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। किशोर अम्बी, आप महाराष्ट्र से हैं, रूपेश शर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, अब्दुल तवाब कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं, रचित सिन्हा, अंकुर वार्षणे और राहुल शर्मा लुधियाना से, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।